یہ احمقانہ تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا، بابا نے کہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے، پھر اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو، بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتن نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا، ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا، یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں، اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی، وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں، میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں، میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں، اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اب۔ امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے، حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ارشد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں، بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں، تمہیں شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا؟ کیسی شرمندگی بابا، یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو۔ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی، ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا، وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے، وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ यह सवाल पैदा हुआ भी तो उस नए ताल्लुक के बाद वो इस बारे में ज्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। उनका यह ख्याल और अंदाजा सही साबित हुआ था। इमामा का जहन वाकई तहरीम की तरफ से हट गया था। अर्शद में वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर उस ताल्लुक के कायम होने के बाद उस दिलचस्पी में इजाफा हो गया था। हाशिम ने उसे बहुत मुतमईन और मगन देखा था। वो पहले ही की तरह तमाम मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम ने उन्हें बताया था उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। वो फौरी तौर पर यह नहीं जान सके, मगर उन्हें यह जरूर इल्म हो गया कि इमामा के अकायद और नजरियात में खासी तब्दीली आ चुकी थी, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे खानदान के लिए तशवीश का बाइस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह उसे भी आला तालीम दिलवाना चाहते थे, और ये इसलिए भी अहम था कि उसे शादी के बाद खानदान ही में जाना था। वो खानदान बहुत तालीम याफ्ता था। खुद उनका होने वाला दामाद अर्शद भी इमामा को आला तालीम याफ्ता देखना चाहता था। हाशिम मुबीन के लिए उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके उसे घर बैठा लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस सूरत में उसे आज़म मुबीन को इसकी वजह बतानी पड़ती,
और इमामा से सख्त नाराज होने के बावजूद
वो नहीं चाहते थे कि आज़म मुबीन और उनका खानदान इमामा की इन बदले हुए अकायद के बारे में जानकर बरगुश्ता और बदसन हों, और फिर शादी के बाद वो अर्शद के साथ बुरी जिंदगी गुजारे। उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों को इस बात को राज रखने की ताकीद की, तो दूसरी तरफ इमामा की मिन्नत और समाजत पर उसे अपनी तालीम जारी रखने की इजाजत दे दी। इमामा सभिया के लेक्चर अटेंड करने और उसके वहां जाने या जलाल से मिलने के मामले में इस कदर मोहतात थी कि उसका यह मेलजोल उन लोगों की नजरों में नहीं आ सका। शायद इसकी एक वजह जवेरिया और राबिया को भी हर चीज के बारे में अंधेरे में रखे हुए थी, वरना इसके बारे में जरूर कोई ना कोई खबर इधर उधर गर्दिश करती और हाशिम मुबीन तक भी पहुंच जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ। हाशिम मुबीन उसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे, मगर इमामा के अंदर आने वाली उन तब्दीलियों ने उन्हें तशवीश में मुब्तिला कर दिया था। उनके दिमाग में जो वाहिद हल आया था वो उसकी शादी थी। उनका ख्याल था कि उसकी शादी कर देने से वो खुद इमामा की जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह अचानक उसकी शादी का फैसला कर लिया था। जलाल, मेरे पेरेंट्स अर्शद से मेरी शादी करना चाहते हैं।
लाहौर आने के बाद इमामा ने सबसे पहले जलाल से मुलाकात की थी।
मगर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी हाउस जॉब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, जलाल ने कहा। वो ऐसा ही कहते थे, मगर अब वो कहते हैं कि मैं अपनी तालीम शादी के बाद भी जारी रख सकती हूँ। अर्शद लाहौर में घर ले लेगा तो मैं ज्यादा आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूंगी। जलाल उसके चेहरे से उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकता था। जलाल भी एकदम फिक्रमंद हो गया। जलाल, मैं अर्शद से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी सूरत अर्शद से शादी नहीं कर सकती, वो बड़बड़ाई। फिर तुम अपने पेरेंट्स को साफ साफ बता दो, जलाल ने एकदम किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा। क्या बता दो? यही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आपको अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, मुझे उन्हें फिर सब कुछ ही बताना पड़ेगा। वो बात करते करते सोचने लगी। जलाल, आप अपने पेरेंट्स से मेरे सिलसिले में बात करें, आप उन्हें मेरे बारे में बताएं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर और दबाव डाला तो फिर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। इमामा, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, वो रजामंद हो जाएंगे, मैं जानता हूं मैं उन्हें मना सकता हूं, जलाल ने उसे यकीन दिलाया। पूरी गुफ्तगू के दौरान पहली बार इमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अगले चंद हफ्ते वो अपने पेपर्स के सिलसिले में मसरूफ रही, जलाल से बात ना हो सकी। आखिरी पेपर वाले दिन वसीम उसे लेने के लिए लाहौर आ गया था। वो उसे वहां यूं देखकर हैरान रह गई थी। वसीम, मैं अभी तो नहीं जा सकती, आज तो मैं पेपर से फारिग हुई हूं, मुझे भी यहां कुछ काम है। मैं कल तक यहीं हूं, अपने दोस्त के यहां ठहर जाता हूं, जब तक तुम अपने काम निपटा लो फिर इकट्ठे चलेंगे। वसीम ने उसके लिए मुदाफियत का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। मैं चलती हूं तुम्हारे साथ, इमामा ने कुछ बेदिली से फैसला करते हुए कहा। उसे अंदाजा था कि वसीम उसे साथ लेकर ही जाएगा। तुम अपनी चीजें पैक कर लो, अब तुम सारी छुट्टियां वहां गुजार कर ही आना, उसे वापस मुड़ते देखकर वसीम ने कहा। उसने सर हिला दिया, मगर उसका अपनी तमाम चीजें पैक करने या इस्लामाबाद में सारी छुट्टियां गुजारने का कोई इरादा नहीं था। उसने तय किया था कि वो चंद दिन वहां गुजार कर किसी न किसी बहाने से लाहौर वापस आ जाएगी, और यही उसकी गलत फहमी थी। रात के खाने पर वो सब घर वालों के साथ खाना खा रही थी, सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? हाशिम मुबीन ने खाना खाते हुए उससे पूछा। बहुत अच्छे हुए, हमेशा की तरह, उसने चावल का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। वेरी गुड, चलो पेपर्स की टेंशन तो खत्म हुई, अब तुम कल से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। इमामा ने हैरानी से उन्हें देखा। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? फर्नीचर की, और ज्वेलर के पास पहले चले जाना तुम लोग, बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। हाशिम मुबीन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा, मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है?
इमामा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में उसका रंग फक हो गया। मेरी शादी की तारीख? उसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा, जो उसके तासुरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। यह आप कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? हवन्नक चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन एकदम संजीदा हो गए। और मैंने इनकार कर दिया था। मैं, हाशिम मुबीन ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं अस्जद के घर वालों से बात कर चुका हूँ, हाशिम मुबीन ने तेज आवाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। इमामा एकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं अस्जद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप उनसे बात करके उसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम अस्जद से शादी करोगी और उसी तारीख को जो मैंने तय की है, तुमने सुना? वो बेइख्तियार चिल्लाए, इट्स नॉट फेयर, इमामा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या फेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को उसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेइख्तियार रोने लगी। कर रहा हूं जबरदस्ती, फिर मैं हक रखता हूं, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने के बजाय अपने होंठ भींचते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेजी से डाइनिंग रूम से निकल आई। मैं उससे बात करती हूँ, आप प्लीज खाना खाएं, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं, सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा और खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ, उसने तेजी से वसीम के पास जाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों, मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहां ले आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो, तो मैं कभी यहां ना आती। वो दहाड़ी, मैंने वही किया जो मुझे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं, वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहां मेरे पास क्यों आया हो? बाबा के पास जाओ, उनके पास बैठो, बस यहां से दफा हो जाओ। वसीम होंठ भींचते हुए उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर कमरे में बैठ गई। उस वक्त उसके पैरों से सही मानों में जमीन निकल चुकी थी। ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो उस वक्त हो गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसका दिल डूबने लगा। मुझे सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कॉन्टेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा, उससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी। उसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी उस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। उसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फोन किसी ने नहीं उठाया। उसने ये के बाद दीगरे कई बार नंबर मिलाया। आधे घंटे तक उसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद उसने मायूसी के साथ फोन रख दिया। वो जवेरिया या राबिया को फोन नहीं कर सकती थी, वो दोनों उस वक्त हॉस्टल में नहीं थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने सबिया का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके वालिद ने फोन उठाया। बेटा, सबिया तो पिशावर गई है अपनी अम्मी के साथ, सबिया के वालिद ने इमामा को बताया। पिशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। उसके कजन की शादी है, वो लोग जरा पहले चले गए हैं, मैं भी कल चला जाऊंगा, उसके वालिद ने बताया। कोई पैगाम हो तो आप मुझे दे दें, मैं सबिया तक पहुंचा दूंगा। नहीं अंकल, शुक्रिया, वो उनके साथ इस सारे मामले में क्या बात कर सकती थी। उसने फोन रख दिया। उसके डिप्रेशन में इजाफा होने लगा। अगर मेरा जलाल से कॉन्टेक्ट ना हुआ तो? उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। एक बार फिर उसने जलाल का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने उसके हाथ से रिसीवर लिया। वो सुन हो गई। हाशिम मुबीन उसके पीछे खड़े थे। किसको फोन कर रही हो? उनके लहजे में बेहद ठहराव था। दोस्त को कर रही थी, इमामा ने उनकी तरफ देखे बगैर वो उनसे नजरें मिलाकर झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं मिला देता हूं, उसने सर्द आवाज में कहते हुए रीडायल का बटन दबा दिया और रिसीवर कान से लगाया। इमामा जर्द चेहरे के साथ उन्हें देखने लगी। वो कुछ देर तक किसी तरह रिसीवर के साथ कान लगाए खड़े रहे, फिर उन्होंने रिसीवर को रख दिया। यकीनन दूसरी तरफ कॉल रिसीव नहीं की गई थी। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी जिसको तुम इस वक्त फोन कर रही हो? उन्होंने दुरुस्त लहजे में इमामा से पूछा। जैनब। फोन की स्क्रीन पर जैनब का नंबर था। वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन को जैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुंचे, इसलिए उसने उनके इस्तफसार पर जल्दी से उसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं उसके जरिए जबेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ, उसे तहम्मुल से कहा। तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जबेरिया तक पहुंचा दूंगा, बल्कि ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ اے ماما، مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں، ہاشم مبین دم پا خود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تن تنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہ نکلے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ کبھی بھی تمہاری کہیں اور شادی ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو پھر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکانکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکیوں کی طرف آ گئی، اور خالی اس ذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا، دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں، اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار، اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی ریسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سالار اس سے مخاطب ہوا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ پل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو، میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی، شاید کل رات بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو، اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال النصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے، اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی، اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے، और फिलहाल तो आदमी फोन रिसीव नहीं कर रहा। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने मायूसी के आलम में मजीद कुछ कहे बगैर फोन रख दिया। सालार मोबाइल बंद करके कुछ देर उसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलालुन नसर, इमामा हाशिम, राबता, पेरेंट्स से बात, जबरदस्ती की शादी। उसने वहां बैठे बैठे उस जगह पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि उससे इमामा का ताल्लुक किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए उन दोनों के बारे में सोचता रहा। उसे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है। वो अपने लिए उसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ था और उसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो उससे मदद मांग रही थी। ये क्या कह रही है खातून, मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? उसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद उसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और उसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर उन मुलाकातों में उसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। उसके अपने घर वालों के बरक्स वसीम का घराना खासा रवायत परस्त था। वो कभी भी इस तरह खुलेआम उनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था, मगर उसने इस बात पर भी कभी ज्यादा गौर व खौस नहीं किया था। उसका ख्याल था कि हर खानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। उसी तरह वसीम के खानदान की भी अपनी रवायात थी। उसे इमामा के मूड और टेम्परमेंट का थोड़ा अंदाजा था, मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके उस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो उसे लगा था। जब वो काफी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। भाड़ में जाए इमामा और ये सारा किस्सा, वो बड़बड़ाया और करवट लेकर उसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी उसी तरह बैठी रही। उसे अपने पेट में ग्रहें पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई, उसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10:30 बजे के करीब उसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाजें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और उसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और उसे उनके ऑफिस जाने का इंतजार था। उनके जाने के आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लाउंज में उसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फोन के पास चली गई। उसने फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे बाबा कहकर गए हैं तुम कहीं फोन नहीं करोगी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं अज्जद को फोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फोन बंद कर सकती हैं, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। शायद ये उसका अंदाजा ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया, मगर वह अज्जद को फोन नहीं कर रही थी। चंद बार बैल बजने के बाद दूसरी तरफ फोन उठा लिया गया। फोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, उसने जलाल का नाम लिए बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चले गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ अर्शद, इमामा ने कहा। अर्शद, दूसरी तरफ से जलाल की आवाज आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही को बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है।
इमामा,
जलाल को जैसे करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा उसकी बात सुने बगैर उसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है।
इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका।
तो फिर तुम बात करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानते हो। मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूंगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं।
इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है?
जलाल के जहन में अचानक एक झमाका हुआ।
हाँ, इसलिए तुम मुझे अज्जद कह रही हो?
हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ।
कल फोन कर लो।
तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी।
ये मुझे नहीं पता,
इमामा ने कहा।
ठीक है इमामा,
मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा।
उसने इमामा को तसल्ली देते हुए फोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्रिया अदा किया।
उसकी भाभी या अम्मी को यह शक नहीं हो सका कि वह अज्जद से नहीं किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आजम भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे या अज्जद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगे, सलमा ने इस बार कदर नर्म लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है, मामा ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा ना सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हिदायत करके गए हैं कि तुम्हें बाहर ना जाने दें।
अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं?
मामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा।
मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया, मेरी हाउस जॉब तक इंतजार कर लें, उसके बाद शादी करते। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार उसकी भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की। खामखा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूं कि तुम तो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम लाहौर गई हो बहुत अजीब हो गई हो, और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है ये सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। मामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर? समझाती तो तब अगर मुझे कोई बात काबिल एतराज लगती, और मुझे कोई बात काबिल एतराज नहीं लगी, सलमा ने बड़े आराम से कहा। मामा गुस्से के आलम में वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। सालार सुबह खिलाफ मामूल देर से उठा। घड़ी देखते हुए उसने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। सिकंदर और तैयबा कराची गए हुए थे और वो घर पर अकेला ही था। मुलाजिम जिस वक्त नाश्ता लेकर आया वो टीवी ऑन किए बैठा था। जरा नासरा को अंदर भेजना, उसे मुलाजिम को देखकर कुछ याद आया। उसके जाने के चंद मिनट बाद नासरा अंदर दाखिल हुई। जी साहब, आपने बुलाया है? अधेड़ उम्र मुलाजमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ मैंने बुलाया है, तुमसे एक काम करवाना है, सालार ने टीवी का चैनल बदलते हुए कहा। नासरा, तुम्हारी बेटी वसीम के घर काम करती है ना? सालार अब रिमोट रखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाशिम साहब के घर? नासरा ने कहा। हाँ उन्हीं के घर। हाँ जी करती है, वो कुछ हैरान होकर उसका मुंह देखने लगी। किस वक्त जाती है वो उनके घर? इस वक्त उनके घर पर ही है। क्या हुआ है सालार साहब? नासरा अब कुछ परेशान नजर आने लगी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ, यह मोबाइल उसे दो। सालार ने बड़े लापरवाह अंदाज में अपना मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। नासरा हक्का बक्का रह गई। मैं आपकी बात नहीं समझी, ये मोबाइल अपनी बेटी को दूं?
और उससे कहूं कि किसी को बताए बगैर ये इमामा तक पहुंचा दे।
मगर क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हें जो कहा है वही करो, सालार ने नागवारी के आलम में उसे झिड़का। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? नासरा की बात को उसने दृष्टि से काट दिया। किसी को पता तब चलेगा जब तुम अपना मुंह खोलोगी, और तुम अपना मुंह खोलोगी तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान होगा, और किसी को नहीं। लेकिन अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो न सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा बल्कि तुम्हें भी खासा फायदा होगा। नासरा ने इस बार कुछ कहे बगैर खामोशी से वो मोबाइल पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं, किसी को इस मोबाइल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना वॉलेट निकाल रहा था। नासरा सर हिलाते हुए जाने लगी। एक मिनट ठहरो, सालार ने उसे रोका। वो अब अपने वॉलेट से कुछ करेंसी नोट निकाल रहा था। ये ले लो, उसने उन्हें नासरा की तरफ बढ़ा दिए। नासरा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो नोट पकड़ लिए। वो जिन घरों में काम करती रही थी वहां के बच्चों के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ थी। उसे भी पैसे कमाने का मौका मिल गया था। उसने फौरी अंदाजा यही लगाया था कि मामा और सालार का चक्कर चल रहा था, और ये मोबाइल वो तोहफा था जो वो उसे मामा को देना चाहता था। मगर उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि सबका उससे पहले क्यों नहीं पता चला। उसकी तो शादी हो रही थी, फिर वो क्यों इस तरह की हरकत कर रही थी? और देखो जरा मुझे, और मैं मामा बीबी को कितना सीधा समझती रही। नासरा को अपनी बेखबरी पर अफसोस हो रहा था। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जलाल रात को अपने वालिद के कमरे में चला आया। उसके वालिद उस वक्त अपने एक फाइल देखने में मसरूफ थे। हाँ आओ, क्या बात है? उसने जलाल को देखते हुए कहा। वो उनके पास एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर वो इसी तरह खामोश बैठा रहा। उसके वालिद ने गौर से उसका चेहरा देखा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो कुछ परेशान है। उन्हें एकदम तशवीश होने लगी। अब्बू, मैं शादी करना चाहता हूं, जलाल ने किसी तमहीद के बगैर कहा। क्या? अंसर जावेद को उसके मुंह से उस जुमले की तवक्को नहीं थी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादी करना चाहता हूं। यह फैसला तुमने एकदम कैसे कर लिया? कल तक तो तुम बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ थे, और अब आज तुम शादी का जिक्र ले बैठे हो। अंसर जावेद मुस्कुराए। बस मामला ही कुछ ऐसा हो गया है, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है। अंसर जावेद संजीदा हो गए। आपने जैनब की दोस्त उमा को देखा है? उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अंसर जावेद ने फौरन अंदाजा लगाया। जलाल ने इस बात में सर हिला दिया। मगर वो लोग तो बहुत अमीर हैं, उसका बाप बड़ा सनतकार है, और वो मुसलमान भी नहीं है। अंसर जावेद का लहजा बदल चुका था। अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, उसकी फैमिली कादियानी है, जलाल ने वजाहत की। उसके घर वालों को पता है? नहीं। तुम्हारा ख्याल है वो ये प्रपोजल कबूल कर लेंगे? अंसर जावेद ने चुपते हुए लहजे में पूछा। अब्बू, उसकी फैमिली की इजाजत की जरूरत नहीं है, उन लोगों की इजाजत के बगैर हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बार अंसर जावेद ने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हें किसी हालत में इजाजत नहीं दे सकता। जलाल का चेहरा उतर गया। अब्बू, मेरी उसके साथ कमिटमेंट है, उसने मध्यम आवाज में कहा। मुझसे पूछकर कमिटमेंट नहीं की थी तुमने, और इस उम्र में बहुत सारी कमिटमेंट्स होती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि बंदा अपनी जिंदगी खराब कर ले। उन्हें अपने पीछे लगाकर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब्बू, मैं खुफिया तौर पर शादी कर लेता हूँ, किसी को बताएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर पता चल गया तो? मैं वैसे भी तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने तक तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब्बू प्लीज, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता, जलाल ने मध्यम आवाज में अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अच्छा, ऐसा है तो तुम उससे कहो कि वो अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात करें। अगर उसके वालिदैन मान जाते हैं तो मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा, उन्होंने तेज मगर हतमी लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से कतई नहीं करूंगा जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहे। अब्बू, आप उसका मसला समझें, वो बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस वो किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है जिस पर उसके घर वाले राजी नहीं होंगे। जलाल ने दानिस्ता तौर पर अरशद और उसकी मंगनी का जिक्र गोल कर दिया। मुझे किसी दूसरे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये इमामा का मसला है, वो जाने। तुम अपने काम से काम रखो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अंसर जावेद ने दो टोक अंदाज में कहा। अब प्लीज मेरी बात समझें, उसको मदद की जरूरत है, बहुत से लोगों को मदद की जरूरत होती है, तुम किस किस की मदद करोगे? और वैसे भी हमारे और उनके स्टेटस में इतना फर्क है कि उनसे कोई दुश्मनी या मुखालफत मोल लेना हमारे बस की बात नहीं, समझे तुम? और फिर मैं एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करके अपने खानदान वालों का सामना कैसे करूंगा? अब्बू, वो मुसलमान हो चुकी है, मैंने आपको बताया है, जलाल ने झुंझला कर कहा। चार मुलाकातों में वो तुमसे इतनी मुतासर हो गई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्बू, उसने मुझसे मिलने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, तुमने इस्लाम कबूल करते देखा था उसे? मैं उससे मजहब के बारे में तफसीलन बात करता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है, बिलफर्ज वो ऐसा कर भी चुकी है, तो फिर उसे अपने मसाइल से खुद निपटना चाहिए, तुम्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। अपने वालिदैन से दो टोक बात करें, उन्हें बताएं कि तुमसे शादी करना चाहती है, फिर मैं और तुम्हारी अम्मी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जलाल, अगर उसका खानदान अपनी मर्जी और खुशी से उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर तैयार हो जाए तो मैं उसे बाखुशी कबूल कर लूंगा, मगर किसी बेनामो निशान लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। मुझे इस मुआशरे में रहना है, लोगों को मुंह दिखाना है, बहू के खानदान के बारे में क्या कहूंगा मैं किसी से, ये कि वो घर छोड़कर आई और उसने अपनी मर्जी से मेरे बेटे से शादी कर ली है। अब्बू, यह हमारा मजहबी फरीजा है कि हम उसकी मदद करें, और अंसर जावेद ने तलखी से उसकी बात काट दी। मजहब को बीच में लेकर मत आओ, हर चीज में मजहब की शिरकत जरूरी नहीं होती, सिर्फ तुम ही ये मजहबी फरीज अदा करने वाले रह गए हो, बाकी सारे मुसलमान मर गए। अब्बू, उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बेटा, यहाँ बात मदद की या मजहब की नहीं है, यहाँ सिर्फ जमीनी हकायक को देखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि तुम में मदद का जज्बा है और तुम्हें अपने मजहबी फराइज का एहसास है, मगर इंसान पर कुछ हक उसके वालिदैन का भी होता है, और यह हक भी मजहबी ने फर्ज किया है, और उस हक के तहत मैं चाहता हूँ कि तुम उस खानदान की मर्जी के बगैर उससे शादी ना करो। फर्ज करो तुम उससे शादी कर भी लेते हो तो क्या होगा, तुम तो चंद माह में अमेरिका होगे और वो यहाँ घर बैठी होगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों की तालीम पर भी खर्च करूं और उसकी तालीम पर भी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पर मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो तो डॉक्टर नहीं बनेगी, यहाँ घर में कितने साल तुम उसे बिठा सकते हो, और अगर उसके खानदान ने तुम पर या हम पर केस कर दिया तो इस सूरत में तुम भी पाबंद होकर रह जाओगे और मैं भी। तुमको अपनी बहन का एहसास होना चाहिए। तुम ये चाहते हो कि इस उम्र में मैं जेल चला जाऊं, और शायद तुम भी। जलाल कुछ बोल ना सका। इन चीजों के बारे में इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, उससे कहो अपने वालिदैन से बात करके उन्हें रजामंद करें, हो सकता है वो रजामंद हो जाए, फिर मुझे क्या एतराज होगा तुम दोनों की शादी पर। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो फिर उससे कहो कि वो किसी और से शादी कर ले, और तुम ठंडे दिल से सोचो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदेह है। अंसर जावेद ने आखिरी कील ठोंकी।
बाजी, मैं आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ, इमामा ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने के बजाय दरवाजा बंद करके उसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम, इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर फिर उसकी बात हलक ही में रह गई। मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला। इमामा हैरत से उसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है, वो कह रही थी कि साथ वाले सालार साहब ने आपके लिए दिया है। उसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ा दिया। इमामा ने तेजी से मोबाइल को झपट लिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। देखो,
तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल लाकर दिया है। इमामा ने उसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज सालार साहब के लिए देनी हो तो मुझे दे दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही उसने कमरे को लॉक किया। कांपते हाथों और दिल की बेकाबू होती हुई धड़कनों के साथ उसने दरवाजे से मोबाइल और उस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो उसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात ही को आएगा, तुम जैनब से बात कर लो, उसे बुला दूं, जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं जैनब से फिर बात कर लूंगी। बस मैंने उनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे उन्हीं के बारे में पूछना था, मैं दोबारा फोन कर लूंगी, इमामा ने फोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने उस दिन दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, वो सिर्फ रात होने का इंतजार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो उससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने उसे अरशद के फोन की इतला दी। वो जिस वक्त नीचे आई उस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा था। वो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए फोन की तरफ चली गई। फोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ अरशद की आवाज सुनाई दी थी। बेख्तियार उमामा का खून खोलने लगा, ये जानने के बावजूद कि उस शादी को तय करने में अरशद से ज्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। इमामा को उस पर गुस्सा आ रहा था, वो उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। अरशद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है?
कैसा धोखा इमामा?
शादी की तारीख तय करना, तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने उनसे कहा था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर फर्क भी क्या पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों बाद, अरशद ने कदरे लापरवाही से कहा। अरशद, तुम्हें फर्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ मैं जानता हूं, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूं। तुम्हें बता रहा हूं, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है, तुम उसे रुकवा दो।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो मामा,
मैं इसे कैसे रुकवा दूं? अरशद ने कुछ हैरानी से कहा। अरशद प्लीज इमामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी पोजीशन समझो, अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने उसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने उसकी पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की थी, वो खामोशी से अरशद के साथ होने वाली इस गुफ्तगू को सुनता रहा। जब इमामा ने फोन बंद कर दिया तो वसीम ने उससे कहा, तुम खामखा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो, कल भी तो तुमने शादी अरशद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज हैं, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम अपने काम से काम रखो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो काफी है। इमामा उस पर गुर्राई और वापस अपने कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर उसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब उसने जलाल को फोन किया। फोन जलाल ही ने उठाया था, शायद वो इमामा के फोन की तवक्को कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, उसने इमामा से कहा। फिर वो उसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने कहा, अब्बू इस शादी पर असहमत नहीं। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे उन्हें शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था, मगर उन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज है। वो समझते हैं कि तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फर्क है, और वो तुम्हारे खानदान के बारे में भी जानते हैं। उन्हें सबसे बड़ा एतराज इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्जी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। उन्हें यह भी खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी मोबाइल कान से लगाए उसकी आवाज सुनती रही। आपने उन्हें रजामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो राजी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा खानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे, जलाल ने उससे कहा। और आप क्या कहते हैं? इमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे, बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी उनका बायकॉट कर देगी, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप अरशद से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ, इमामा की आवाज़ फिर आने लगी। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उनके मजहब का नहीं है तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें,
आप उन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं, उसने मुल्तजियाना लहजे में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूंगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त उससे बात करने के बाद फोन बंद किया, वो बेहद दिल गिरफ्तार थी। उसके वहमो गुमान में भी ये ना था कि जलाल के वालदेन को इस शादी पर एतराज होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली उस जहनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के खतरों में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में उससे कहा। वो इमामा के कहने पर उनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें खतरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा खौफजदा हो रही हैं, जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हिमाकत की हद तक बेवकूफ हो, उसकी अम्मी ने उसकी बात पर उसे छिड़का। इमामा के खानदान और उसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसे बाद उसे भी वहां बुलवा लूंगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लें? और तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है, हमें इमामा या किसी और की जरूरत नहीं है, अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाजा होता कि तुम इस तरह की लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू करोगे तो इससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती, उसकी अम्मी ने कदरे नाराजी से कहा। अम्मी, मैं इमामा को पसंद करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही उसका खानदान, अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं, वो यहाँ आती रहती है, और तब तो आप उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती थी, जलाल ने उन्हें याद दिलाया। तारीफ करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं, वो खफगी से बोली। अम्मी, कम अज कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा सा हमदर्दी से सोचें, इस बात जलाल ने लजाजत आमेज लहजे में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत और फैसले से हमारे पूरे खानदान पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊंचे खानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हारी शादी की इजाजत दे भी दें तो मैं कभी नहीं दूंगी, ना ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूंगी। अम्मी, आप इस सूरत हाल को समझें, वो कितना बड़ा कदम उठा रही है, इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो फिर उसे कम से कम दूसरे के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं उसे बुरा नहीं कह रही, बहुत अच्छा फैसला कर रही है, मगर हम लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तुम कुछ अक्ल से काम लो। तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है, उसकी अम्मी ने कदरे नर्म लहजे में कहा। बेटा, अच्छे खानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से खानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। खुद सोचो, सिर्फ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? खानदान उसका बायकॉट कर चुका होगा, मुआशरे में जो बदनामी होगी वो अलग है, और तुमसे शादी हो भी जाए तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है, अम्मी उसे संजीदा लहजे में समझा रही थी। जलाल किसी एतराज या एहतजाज के बगैर खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे से कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कायल हुआ है या नहीं। इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फोन किया, फोन जलाल ही ने उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से ही बात की है, वो अब्बू से भी ज्यादा नाराज हुई है मेरी बात पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मल टूट गया। वो कह रहे हैं कि मुझे एक फजूल मामले में खुद इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जलाल ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मैंने उन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, मगर उनका कहना था कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इमामा को उसके लफ्जों से शदीद तकलीफ हुई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रजामंद नहीं है और ना ही होंगी। जलाल की आवाज धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जलाल, उसने डूबते दिल के साथ किसी मोहूम सी उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूं इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे वालिदैन इस प्रपोजल पर राजी नहीं है। क्या तुम उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें नाराज करके तुमसे शादी नहीं कर सकता, प्लीज जलाल। वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता, तुम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही हूं, मैं तो आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूं। उसके आसाब चटक रहे थे, उसे याद नहीं था कि उसने जिंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाया और मन्नत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर लें, अपने वालिदैन को इसके बारे में ना बताएं। बेशक आप बाद में उनकी मर्जी से भी शादी कर लें, मैं एतराज नहीं करूंगी। तुम अब बच्चों जैसी बातें कर रही हो, खुद सोचो अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूंगा? इस बार जलाल का लहजा चुपता हुआ था, वो बोल नहीं सकी। नहीं मामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं अभी सारे मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अपने इस मसले का हल खुद निकालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़। जलाल ने फ़ोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर उसे अपने इर्द गिर्द की पूरी दुनिया धुएं में तहलील होती नजर आई। किसी चीज़ के मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं ना होने का फ़र्क इमामा से बेहतर नहीं बता सकता था। माउफ जहन और शल होते हुए आसाब के साथ बहुत देर तक किसी बुत की तरह अपने बेड पर टांगे लटकाए बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए पापा को सब कुछ, इसके सिवा अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दें, कम अज कम मुझे इस घर से तो रिहाई मिल जाएगी। मैं अर्शद से शादी नहीं करना चाहती तो शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इमामा ने मुस्तहकम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा उसे अगले रोज अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज था, अब तुम्हें अर्शद से शादी पर एतराज है, आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा उसकी बात पर मुश्तइल हो गई। सिर्फ ये कि आप अर्शद से मेरी शादी ना करें। तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए थे। यकीनन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो किससे करना चाहती हो? अब मुंह क्यों बंद हो गया है? आखिर तुम अर्शद से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। बाबा शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूंगी, वह हिम्मत करके बोली। कल तक अर्शद तुम्हारी पसंद था, हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल तक था, अब नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो अब क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज में पूछा। बाबा मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सख्ता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्मे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था, वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कभी उन्हें अपनी जिंदगी में औलाद और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। बाबा आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की जहनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहें। सिर्फ अर्शद से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दें जिसे तुम चाहती हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, तुम बेवकूफ समझती हो मुझे। उनके मुंह से जाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम अज कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी खास आदमी के लिए सब कर रही हूं। हाशिम मुबीन उसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुमा जुमा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूं बाबा, मेरी उम्र 20 साल है, मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूं। मैं जानती हूं आपके इस मजहब की वजह से हमारे खानदान पर बड़ी बरकत नाजिल की गई है, वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई। तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी, तुम, हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को उन पर तरस आने लगा। उसे दोजख में खड़े होकर दोजख से डराने वाले शख्स पर तरस आया, उसे आंखों पर पट्टी बांधकर फेरने वाले शख्स पर तरस आया, उसे मोहर शुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया, उसे नफ्स ज़दा आदमी पर तरस आया, उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो, चंद किताबें पढ़कर तुम, इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे, मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका जाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा जाती मसला है। क्या अब ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझ कर आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें। जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझ कर उसने बड़ी रसानियत और संजीदगी से कहा। हाशिम मुबीन की नाराजगी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मजहब बदलने दूं ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बायकॉट कर दे? मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी खराब हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए। कोई भी मजहब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी में अजद ही से करूंगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा, उसके घर चले जाओ, फिर वहां जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहिया कर लिया है। इमामा कुछ कहने के बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रही, फिर कमरे से चली गई। उन्हें उसके कमरे से गए एक घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर असजद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को उसके उस वक्त वहां आने की तवक्को नहीं थी। असजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमाया थी। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो उसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा, उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? असजद, तुम्हें अगर बता दिया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये भी बता दिया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाजा है, इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमाम ने तुर्शी से उसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज को गलत समझा उसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में उसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों इतराज़ है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम अज़ कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज़ नहीं। वो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूँ? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो, उसने तुर्की बतुर्की कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। वो उसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। जिंदगी बर्बाद? कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूं, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किस बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। असजद उसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो, इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में हर कोई इस तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। असजद ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को यह लगता है कि मैं गलत हूं तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की नज़ाकत और अहमियत को समझो, अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दांव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दांव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दांव पर लगा भी है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोजख में क्यों जाऊं? सिर्फ खानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं असजद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, उसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, मैं तुमसे वफा नहीं करूंगी। जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी, तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद में रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए। और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो उसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं। ये सरासर खसारे का सौदा होगा, हमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की से शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी किसी बेसकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला खत्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। ना मैं इनकार करूंगा, ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा इमामा। अब यह हमारे खानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे खानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा ना देती। जहां तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस तरह के टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अर्शद बड़े इत्मीनान से कह रहा था, तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं जहनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक और रिश्ते को उस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूं जब मैंने अपना मजहब छोड़ा था। तुम मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूं तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े करूंगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अर्शद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला है, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फासले को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। अर्शद बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तक मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूं? सालार ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, क्या तुम लाहौर जाकर जलाल से मिल सकते हो? सालार ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। किस लिए? उसे इमामा की आवाज बहुत भारी लग रही थी, यूं जैसे उसे फ्लू था। फिर अचानक उसको ख्याल आया कि वो यकीनन रोती रही होगी, ये उसी का असर है। तुम मेरी तरफ से उसे रिक्वेस्ट करो कि वो मुझसे शादी कर ले, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही। मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, मैं किसी और की मदद के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। बस वो मुझसे निकाह कर ले। तुम्हारा तो उससे फ़ोन पर रब्ता है, तो फिर तुम ये सब खुद उसे फ़ोन पर क्यों नहीं कह देती? सालार ने चिप्स खाते हुए बड़े इत्मीनान से उसे मशवरा दिया। मैं कह चुकी हूँ, उसे इमामा की आवाज़ पहले से ज़्यादा भिराई भी लगी, फिर उसने इनकार कर दिया। वेरी सैड, सालार ने अफसोस का इजहार किया। ये तो वन साइड लव अफेयर हुआ, उसने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। नहीं तो फिर उसने इनकार क्यों कर दिया? तुम ये जानकर क्या करोगे? वो कुछ चिढ़कर बोली। सालार ने एक और चिप्स अपने मुंह में डाला। मेरे वहां जाकर उससे बात करने से क्या होगा, बेहतर है तुम ही दोबारा उससे बात कर लो। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो फोन नहीं उठाता, हॉस्पिटल में भी कोई उसे फोन पर नहीं बुला रहा, वो जानबूझकर कतरा रहा है, इमामा ने कहा। तो फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? जाने दो उसे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ मेरी मदद करो। एक बार जाकर उसे मेरी सूरत हाल के बारे में बताओ, वो मुझसे इस तरह नहीं कर सकता। और अगर उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया तो फिर भी तुम उससे बात करना, शायद कोई सूरत निकल आए, मेरा मसला हल हो जाए। सालार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे इमामा के हाल पर हंसी आ रही थी। फोन बंद करने के बाद चिप्स खाते हुए भी वो इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। हर गुजरते दिन के साथ वो इस सारे मामले में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। ये उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर महसूस हो रहा था। पहले इमामा तक फोन पहुंचाना और अब जलाल से राबता करना। इमामा का बॉयफ्रेंड, उसने चिप्स खाते हुए जेर लब दोहराया। इमामा ने उसे उसके हॉस्पिटल और घर के तमाम कवायद से आगाह कर दिया था, और अब वो सोच रहा था कि उसे जलालुन नसर से मिलकर क्या कहना है। सालार ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा, वो खासा मायूस हुआ। सामने खड़ा लड़का बड़ी आम सी शक्लो सूरत का था। सालार के लंबे कद और खूबसूरत जिस्म ने उसे सिंफ मुखालिफ के लिए किसी हद तक पुरकशिश बना दिया था, मगर सामने खड़ा हुआ वो शख्स उन दोनों चीजों से महरूम था। वो नॉर्मल कदोकामत का मालिक था, उसके चेहरे पर दाढ़ी ना होती तो वो फिर भी कुछ कदरे बेहतर नजर आता। सालार सिकंदर को जलालुन नसर से मिलकर मायूसी हुई थी, इमामा अब उसे पहले से ज्यादा बेवकूफ लगी। मैं जलालुन नसर हूं, आप मिलना चाहते हैं मुझसे? मेरा नाम सालार सिकंदर है। सालार ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माफ कीजिएगा मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। जाहिर आप पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। सालार उस वक्त जलाल के हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए आया। चंद लोगों से उसके बारे में दरियाफ्त करने पर वो उसके पास पहुंच गया था। वो उस वक्त ड्यूटी रूम के बाहर खड़े थे। कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? जलाल अब कुछ हैरान नजर आया। बैठकर? मगर किस सिलसिले में? इमामा के सिलसिले में। जलाल के चेहरे का रंग बदल गया। आप कौन हैं? मैं उसका दोस्त हूँ। जलाल के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। वो चुपचाप एक तरफ चलने लगा। सालार उसके साथ था। पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां चलते हैं, सालार ने कहा। गाड़ी तक पहुंचने और उसके अंदर बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सालार ने कहना शुरू किया। इमामा चाहती है कि मैं आपसे बात करूँ। इमामा ने कभी मुझसे आपका जिक्र नहीं किया, जलाल ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। आप इमामा को कब से जानते हैं? तकरीबन बचपन से, हम दोनों के घर साथ साथ हैं, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी। सालार नहीं जानता उसने आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद ये जलाल के चेहरे के बदलते हुए रंग थे जिनसे वो कुछ और महफूज होना चाहता था। वो जलाल के चेहरे पर नमूदार होने वाली नापसंदीदगी देख चुका था। इमामा से मेरी बहुत तफसीली बात हो चुकी है, इतनी तफसीली बात के बाद और क्या बात हो सकती है, जलाल ने सपाट लहजे में कहा। इमामा चाहती कि आप उससे शादी कर लें, सालार ने जैसे न्यूज़ बुलेटिन पढ़ते हुए कहा। मैं अपना जवाब बता चुका हूँ, वो चाहती है आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। यह मुमकिन नहीं है, वो उस घर में अपने वालिदैन और घर वालों की कैद में है। वो चाहती है अगर आप हमेशा के लिए नहीं तो वक्ती तौर पर उससे निकाह करें और फिर बैलफ की मदद से उसे छुड़ा लें। यह मुमकिन ही नहीं है, वो उनकी कैद में है तो निकाह हो ही कैसे सकता है? फोन पर? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, जलाल ने कहा। मेरे वालिदैन मुझे उससे शादी की इजाज़त नहीं देंगे और फिर वो इमामा को कबूल करने पर भी तैयार नहीं है। जलाल की नज़रें अब सालार के बालों की पौनी पर जमी हुई थी। यकीनन सालार की तरह उसने भी उसे नापसंदीदा करार दिया होगा। उसने कहा कि आप वक्ती तौर पर उससे सिर्फ निकाह कर लें ताकि वो अपने घर से निकल सके, बाद में आप चाहें तो उसे तलाक दे दें। मैंने कहा मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और फिर इस तरह के मामलात, आप खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर वक्ती शादी की बात है तो आप कर लें, आखिर आप उसके दोस्त हैं, जलाल ने कुछ चुभते हुए अंदाज में सालार से कहा। आप इस्लामाबाद से लाहौर उसकी मदद के लिए आ सकते हैं तो फिर ये काम भी कर सकते हैं। उसने मुझसे शादी का नहीं कहा, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा, सालार ने कंधे झटकाते हुए बेतासुर लहजे में कहा। वैसे भी वो आपसे मोहब्बत करती है, मुझसे नहीं, मगर आर्जी शादी या निकाह में तो मोहब्बत का होना जरूरी नहीं, बाद में आप भी उसे तलाक दे दें। जलाल ने मसले का हल निकाल लिया था। आपका मशवरा उसे पहुंचा दूंगा, सालार ने संजीदगी से कहा। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर इमामा से कहें कि वो कोई और तरीका अपनाए, बल्कि आप किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस चले जाएं और उन्हें इमामा के बारे में बताएं कि किस तरह उसके खानदान ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। जब मीडिया इस मामले को हाईलाइट करेगा तो वो खुद ही इमामा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, या फिर आप पुलिस को इस मामले की इत्तला दें। सालार को हैरानी हुई, जलाल की तजवीज पूरी नहीं थी, वाकई इमामा इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी, यह रास्ता ज्यादा महफूज था। मैं आपका यह मशवरा भी उसे पहुंचा दूंगा, आप दोबारा मेरे पास ना आए, बल्कि इमामा से भी ये कह दें कि वो मुझसे किसी भी तरीके या जरिए से दोबारा रब्ता ना करें, मेरे वालदेन वैसे भी मेरी मंगनी करने वाले हैं, जलाल ने जैसे इंकशाफ किया। ठीक है, मैं सारी बातें उस तक पहुंचा दूंगा, सालार ने लापरवाही से कहा। जलाल मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया।